आरव गौरवी जी के घर पर आया हुआ था और वो आयु के बारे में बात कर रहा था। जब से उसे ये पता चला था कि अयान आयु के साथ रह रहा है, तब से आरव कुछ हद तक बेफिक्र हो गया था। वो जानता था कि उसका भाई आयु का अच्छे से ख्याल रखेगा। इस बीच आरव के जिद करने पर अयान ने वीडियो कॉल पर उसे आयु का चेहरा भी दिखाया था। आरव ने आयु के बिना पूरे 6 महीने बिताए थे और अब वक्त आ गया था कि उसे आयु को फिर से अपनी जिंदगी में वापस लेकर आना था। गौरवी जी और बाकी सब भी यही चाहते थे। अयान ने आरव को कॉल पर यह नहीं बताया था कि वो आयु से कैसे मिला था। आरव ने गौरवी जी की तरफ देखकर भौहें सिकोड़ कर पूछा, वैसे आप दोनों को कैसे पता चला कि वो गोवा में है और अयान उसके पास कब पहुंचा? बस सब कुछ इत्तेफाक या खुशकिस्मती समझ लो, जो समय रहते अयान आयु के पास पहुंच गया था। गौरवी जी ने गहरी सांस ली। आरव उलझन भरी निगाहों से उनकी तरफ देख रहा था। गौरवी जी ने उसे सब समझाते हुए कहा, उस दिन तुमसे झगड़ा करने के बाद आयु अपना सामान पैक करके सीधा एयरपोर्ट पहुंची थी। वो काफ़ी ब्रोकन फील कर रही थी और रो भी रही थी। फॉर्चुनेटली उसी समय अयान न्यूजीलैंड से वापस आया था। उसने आयु की तस्वीर देखी थी, इसलिए आयु को देखते ही पहचान लिया था। वो ठीक नहीं लग रही थी तो मैंने ही उसे आयु के पास भेजा था। कॉल चालू था और मैंने उनकी पूरी बातचीत सुनी थी। मैंने ही अयान को आयु के साथ गोवा जाने के लिए उसका ख्याल रखने के लिए कहा था। तब से उन दोनों के बीच अच्छी दोस्ती हो गई थी। गौरवी जी ने पूरी कहानी शॉर्ट में बता दी थी। वहीं आरव के चेहरे पर अविश्वास के भाव थे। वो आयु को अच्छे से जानता था। उसने ना में सिर हिलाया और कंधे उचकाकर बोला, पता नहीं क्यों यकीन नहीं हो रहा है, मिसेस खुराना किसी के साथ इतनी जल्दी फ्रेंडली नहीं होती हैं। और आपने कहा कि वो रो रही थी, तो उसने अयान पर यकीन करके उसे अपने साथ आने दिया? बहुत अच्छे से जानते हो तुम उसे। सच में अयान के लिए बहुत मुश्किल था और वो चुपके से आयु के पीछे गया था, गौरवी जी ने सिर हिलाकर कहा। और इसी के साथ उन्हें वो दिन याद आ गया था। हालांकि वो कॉल पर थी लेकिन उनकी पूरी बातें सुन सकती थी। आयु रो रही थी तब अयान उसके पास जाकर बैठ गया था। काफी देर तक वो बिल्कुल शांत रहा और फिर उसने आयु की तरफ रुमाल बढ़ाते हुए कहा, आपको नहीं लगता कि आप अपने आंसुओं को वेस्ट कर रही हैं? बिल्कुल सही कहा, जिसके लिए रो रही हूँ वो तो ये सब डिजर्व भी नहीं करता है, आयु ने रोते हुए कहा और फिर अचानक अयान की तरफ देखा। अयान ने उसे मुस्कुराते हुए रुमाल लेने का इशारा किया तो आयु तुरंत उससे एक सीट दूर जाकर बैठ गई थी। वो उसे घूरते हुए बोली, देखो इस वक्त मैं परेशान हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं कोई बेवकूफ़ हूँ। मुझे बेवजह हेल्प ऑफर क्यों कर रहे हो? कहीं तुमने इस रुमाल के अंदर कुछ डाल तो नहीं रखा? मुझे किडनैप करने का प्लान है तुम्हारा? वैसे अच्छी बात है कि इस सिचुएशन में भी आप अपनी सिक्योरिटी का ध्यान रख रही हैं, लेकिन हम आपको किडनैपर कहाँ से नज़र आ रहे हैं? हमारे कपड़े स्पेशली डिज़ाइन किए हुए हैं और एक्सक्लूसिव पीस है, अयान ने उसे अजीब नज़रों से देखते हुए जवाब दिया। ऐसे कपड़े रेंट पर मिल जाते हैं और मुझसे दूर रहो, मुझे किसी पर यकीन नहीं है। तुम किडनैपर नहीं भी हो फिर भी मुझे तुमसे हेल्प नहीं चाहिए, आयु ने मुंह बनाकर कहा और सीधा टिकट बुक करवाने के लिए चली गई थी। अयान ने जल्दी से मोबाइल अपने कान पर लगाया और कहा, जिस हिसाब से बिहेव कर रही है और यहाँ से जा रही है, लगता है आपके लाडले पोते ने ही कुछ किया है। अब आप उन्हें कॉल करके बता रही हैं या मैं बताऊँ कि उनकी वाइफ उनसे छुपकर गोवा जा रही है? फिलहाल गोवा के लिए ही फ्लाइट अवेलेबल थी और आयु जल्द से जल्द वहाँ से जाना चाहती थी। गौरवी जी ने अयान को आयु के पीछे जाने के लिए कहा और साथ ही इस बात की सख्त हिदायत दी थी कि वो आरव से बात नहीं करेगा और ना ही उसे आयु और अपने बारे में कुछ बताएगा। हालांकि अयान के लिए आयु को ये यकीन दिलाना मुश्किल था कि वो इत्तेफाक से ही गोवा पहुंचा है। आयु के साथ दोस्ती करने और उसे खुद पर यकीन दिलाने के लिए अयान को बहुत मेहनत करनी पड़ी थी, लेकिन हाँ धीरे धीरे आयु उसके साथ खुलने लगी थी और उसने अपने और आरव के रिश्ते के बारे में उसे सब कुछ बता दिया था। पूरी बात जानने के बाद आरव को और भी बुरा लग रहा था। उसने गौरवी जी के हाथ पर अपना हाथ रखकर गहरी आवाज में कहा, आई प्रॉमिस मैं उसे वापस लेकर आऊंगा और इस बार उसका दिल बिल्कुल नहीं दुखाने वाला। हालांकि तुम यकीन करने के लायक नहीं हो, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें इस बार आखिरी मौका दे रही हूँ। अगर तुमने इस बार आयु को हर्ट किया तो आई स्वेयर मैं तुम्हारा साथ नहीं देने वाली हूँ, गौरवी जी ने सख्त आवाज में कहा। आरव ने उनकी बात पर हामी भरते हुए सिर हिलाया। उनसे बात करने के बाद आरव अपने घर पहुंच चुका था। अब उसे अयान की तरफ से डायरेक्ट अपडेट मिल रही थी। अयान ने उसे पहले ही सतर्क कर दिया था कि उसे आयु का सामना करने के लिए हर तरह की सिचुएशन के लिए तैयार रहना होगा। आयु ने खुद से उसके सामने आने का फैसला किया था तो एक बात तो तय थी कि आरव के लिए मुश्किलें बढ़ने वाली थी। इवेंट लॉन्च में ज्यादा टाइम नहीं था, इसलिए सेलिब्रेशन का पूरा काम जल्दी जल्दी निपटाना था। अयान को पहले लगा था कि आयु ने अपनी जिद में आकर काम करने के लिए हाँ कही है, लेकिन वो ये देखकर हैरान रह गया कि आयु पिछले
दो दिनों से पूरे डेडिकेशन के साथ पूरा इवेंट ड्राफ्ट कर रही थी। हालांकि बाकी प्रोजेक्ट्स में वो इवेंट संभालने का काम करती थी, लेकिन यहाँ तो इवेंट डिजाइन भी वही कर रही थी। आयु पिछले दो दिनों से उससे भी नहीं मिली थी। आखिरकार अयान को ही उससे मिलने के लिए सेलिब्रेशन जाना पड़ा। अयान उसके केबिन में दाखिल हुआ तभी आयु काम में लगी हुई थी। उसने आयु को घूरते हुए कहा, आखिर तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? मुझे लगा था कि तुमने गुस्से में और क्यूरियोसिटी के लिए ये प्रोजेक्ट लेने के लिए हाँ कहा था, लेकिन अब तो तुम इस तरह इसमें डूबी हुई हो जैसे ये आरफ खुराना का नहीं तुम्हारा ड्रीम प्रोजेक्ट हो। इवेंट डिजाइन करने के लिए कम से कम 5 दिन का टाइम लगता है और तुम ये पूरा काम एक दो दिन में क्यों निपटाना चाहती हो? कहीं तुम उससे बदला लेने का तो नहीं सोच रही हो? बेशक मैं उससे बदला लेने वाली हूँ और ये काम जल्दी इसलिए कर रही हूँ ताकि ये ड्राफ्ट लेकर उसके पास पहुँच सकूँ, आयु ने तिरछा मुस्कुराते हुए कहा। अयान भी यही चाहता था कि आरव और आयु जल्द से जल्द एक दूसरे से मिले, लेकिन इस तरह से तो बिल्कुल नहीं। आयु के चेहरे की मुस्कुराहट ही बताने के लिए काफी थी कि वो आरव की बैंड बजाने के लिए पूरी तरह तैयार है। आयु अपनी चेयर से उठकर अयान के पास आई और उसके सामने वाली कुर्सी पर बैठते हुए बोली, उसे क्या लगता है कि सिर्फ उसके ओपिनियन ही मायने रखते हैं और वो पूरी दुनिया और लोगों की लाइफ कंट्रोल करता है? उसने सेलिब्रेशंस को ये प्रोजेक्ट करने के लिए मजबूर किया। मुझे बस इतना बताना है कि वो मेरी लाइफ कंट्रोल नहीं कर सकता है। हाँ, प्लान काफी अच्छा है, अयान जबरदस्ती हंसते हुए बोला। उसके लिए इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है? ड्राफ्ट प्रेजेंट करने का काम तुम्हारा नहीं है? और तुमने उन्हें सबक सिखाने के लिए क्या प्लान बनाया है? अयान ने गर्दन टेढ़ी करके आयु की तरफ देखा। वो जानना चाहता था कि आयु क्या सोच रही है ताकि आरव को पहले ही सब कुछ बताकर सतर्क कर सके। अयान कान लगाकर सुन रहा था तभी आयु ने गहरी सांस ली और अचानक से कहा, अयान क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे?
आयु के शब्द सुनकर अयान को झटका सा लगा और वो खांसने लगा था। आयु ने उसे पानी दिया और घूरते हुए कहा, एक्सक्यूज मी, इतना सीरियस होने की जरूरत नहीं है। ये सब आरव के सामने ड्रामा करने के लिए है। मैं बस उसे ये जताना चाहती हूँ कि मुझे उसके जाने से फ़र्क नहीं पड़ता और मैं अपनी लाइफ में सच में आगे बढ़ चुकी हूँ। वहीं अयान के चेहरे पर ज़बरदस्ती की मुस्कुराहट बनी हुई थी। उसने मन ही मन कहा, ओ गॉड, कहाँ फंसा रहे हो आप मुझे? भाई तो मेरी जान ले लेंगे अगर उन्हें पता चलेगा कि आयु मुझे अपना फेक बॉयफ्रेंड बनाकर लेकर जा रही है, और इसे सच बताया तो ये सच में मेरी जान ले लेगी। अयान बिल्कुल चुप था, उसने कोई जवाब नहीं दिया। तो आयु ने उसके हाथ पर हल्का सा मारते हुए कहा, कहाँ खो गए हो? देखो, मैं ज़बरदस्ती नहीं कर रही हूँ। अगर तुम नहीं करना चाहते तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं क्रिश से बात कर लूँगी। बिल्कुल नहीं, अयान जल्दी से बोला, वो क्रिश एक नंबर का ठरकी है और हर किसी पर लाइन मारता रहता है। उसे तुम पसंद हो, कहीं वो इसे सीरियसली ना ले ले, और मुझे डर है कि वो तुम्हें हर्ट ना कर दे। हाँ, तुम्हारा कहना सही है, पर फिर किससे बात करूँ? आयु ने सोचते हुए अंदाज में जवाब दिया। किसी से नहीं, अयान ने उसे डांटते हुए सख्त आवाज़ में कहा, देखो, तुम्हें उनसे बदला लेना है और उन्हें सबक सिखाना है तो बेशक करो, लेकिन इसके लिए ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का ड्रामा करने की क्या ज़रूरत है? लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ, आयु ने मुंह बनाकर कहा। अयान ने गहरी सांस ली और मन ही मन बोला, सॉरी भाई, लेकिन आयु का फेक बॉयफ्रेंड बनने से बेहतर है कि मैं आपको सबक सिखाने में उसकी हेल्प करूँ। अयान कुछ पल रुका और आयु को समझाते हुए बोला, किसी लड़के को साथ ले जाकर उन्हें जलाने की ज़रूरत नहीं है। उन्हें ये बताओ कि तुम अपनी ज़िंदगी में इतना आगे बढ़ चुकी हो कि अब तुम्हें किसी लड़के की ज़रूरत ही नहीं है। थोड़ा खुद का मेकओवर करो, इतना अच्छा दिखो कि वो तुम्हारे करीब आने के लिए तड़पे और तुम उसे और तड़पाओ। जब उससे मिलने जाओ तो इतने अच्छे से तैयार होकर जाओ कि वो तुमसे नज़रें ही ना हटा सके। ये तुम उसे सबक सिखाने के तरीके बता रहे हो या उसे सिड्यूस करने के? आयु ने उसे घूरते हुए कहा। बेशक उन्हें सबक सिखाने का ही तरीका बता रहा हूँ, तुम उन्हें सिड्यूस करो और अपने पास आने के लिए तड़पाओ, और जब वो तुम्हारे पास आने लगे तब उन्हें ये बताओ कि अब वो तुम्हारे करीब नहीं आ सकते हैं क्योंकि उन्होंने वो हक खो दिया है, अयान जल्दी से बोला। देखा जाए तो बहुत ही बुरा प्लान है, पर काम करके देख सकती हूँ, आयु ने मुंह बनाकर कहा। सिर्फ आयु ही नहीं, अयान को भी अपने प्लान पर डाउट था, पर उन दोनों के पास फिलहाल कोई रास्ता नहीं था। आयु का साथ देने के लिए अयान ने आरव को ज्यादा कुछ तो नहीं बताया था, लेकिन हाँ, उसने आरव को मैसेज करके तैयार रहने के लिए कह दिया था। आरव इस वक्त अपने ऑफिस में मौजूद था और उसे थोड़ी देर पहले ही अयान का मैसेज मिला था। उसके चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट थी। अयान सही कह रहा था, इस बार आयु अगर मेरे सामने आई तो वो ज़रूर कुछ प्लान करके आएगी। मुझे उससे निपटने के लिए रेडी रहना पड़ेगा। आई थिंक इसमें मेरी माहिरा से बेटर मदद और कोई नहीं कर सकता, आरव ने सिर हिलाकर कहा। आयु भले ही अयान के कहने पर अपना फेक बॉयफ्रेंड ले जाने के प्लान को छोड़ चुकी थी, लेकिन आरव आयु को फिर से अपने करीब लाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार था, फिर चाहे उसे इसके लिए माहिरा की ही मदद क्यों न लेनी पड़े। आरव ने माहिरा को मैसेज करके अपने घर आने के लिए कह दिया था।
हालांकि आरव का मैसेज देखकर माहिरा थोड़ा हैरान तो हुई, लेकिन फिर उसे यही लगा कि आयु के वापस आने की उम्मीद किसी को नहीं है, तो शायद ऐसे में आरव ने उसे एक और मौका देने के लिए बुलाया होगा।